کا پراٹھے کلر، 12 نمبر کے رجسٹر میں 7واں پیج۔ گیت ہے جس کا ساتھی ہے بھگوان، ان کو کیا روکے آندھی اور کیا روکے طوفان۔ مایا کی آندھی اور طوفان اس کو روک نہیں سکتے، کس کو؟ جس کا ساتھ ہی بھگوان بن جاتا ہے، سہیوگی بھگوان بن جاتا ہے۔ یہ منشیوں کے بنائے ہوئے گیت ہیں، پرنتو جنہوں نے بنائے ہیں وہ کوئی ان کا کوئی ارتھ جانتے نہیں ہیں کہ بھگوان کیسے آ کر کے ساتھ ہی بنتا ہے اور کن کا ساتھ ہی بنتا ہے۔ 500 کروڑ کا ساتھی بنتا ہے، کیونکہ 500 کروڑ کو بھی ساتھ لے جائے گا، اور انتر کیا پڑتا ہے؟ ساتھ تو سب کو لے جائے گا، ساتھ ہی تو سب کا ہے، لیکن آندھی اور طوفان جب آتے ہیں قیامت کے سمے میں، تو اس سمے پرماتما جن کے اوپر چھتر چھایا بن کر کے رہتا ہے وہ وشیش آتما، سب کے اوپر چھتر چھایا بن کر کے نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو فرسٹ کلاس بچے ہوں گے 4.5 لاکھ، جن کو شریر سے ہی سدگتی پراپت کرنی ہے، ان کی وشیشتا کیا ہوگی؟ ان کے شریر کی سرکشا کرنے کے لیے وہ ساتھی کے روپ میں ملا ہوا بھگوان ان کی قدم قدم پر سرکشا کرے گا، تمہارے شریر کو کوئی چوٹ نہیں لگنے دے گا، ایسا ساتھی بن کر کے آتا ہے۔ چاہے کتنے بھی آندھی اور کتنے ہی طوفان آئے، چاہے پراکرتک پرکوپ ہوں اور چاہے مایا کے پرکوپ ہوں، لیکن ان بچوں کا سہیوگی باپ بھگوان ضرور بنتا ہے۔ تو دنیا والے اس ارتھ کو نہیں جانتے کہ بھگوان کب آتا ہے، کب ساتھی بنتا ہے، کون سے طوفان ہے۔ گیت بھجن آدی گاتے ہیں، مہما کرتے ہیں بھکت لوگ، پرنتو جانتے کچھ نہیں کہ مہما کس سمے کی ہے، گیت اور گائن کس سمے کے ہیں۔ لیکن ہم بچے تو جانتے ہیں کہ سنگ نگ میں جب باپ آئے ہیں اس سمے کے گیت اور اسی سمے کی مہما ہے۔ شاستروں باپ جانتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، بچے جانتے ہیں یہ ہمارا بابا ہے۔ اب یہ بے حد کی بات ہے، پھر بھی سبھی بے حد کے باپ کو یاد کرتے ہیں۔ بھلا جاننے والے بچے ہیں لیکن یاد تو سبھی کرتے ہیں۔ ایسی ایک بھی منشیاتما 500 کروڑ میں سے نہیں ہے جو اس بے حد کے باپ کو یاد کرنے والی نہ ہو۔ بے حد کے باپ کتنے ہیں؟ ایک بے حد کا باپ ایک ہے۔ اب تو ساری ایڈوانس نالج بھول گئی۔ جو آتما ہے ایک شیو جیوتی بندو، وہ آتماؤں کا باپ ہے، کیونکہ بے حد کی آتما ہے۔ صرف منشیہ آتما ہے نہیں، کیٹ پشو پکی پتنگے سب کی آتما ہے، ان سب کا باپ ہے۔ اور دوسرا ہے ساکار منشیہ شکتی کا باپ، 500 کروڑ منشیہ آتماؤں کا باپ ہے، کیونکہ منشیوں کے آدھار پر کیٹ پشو پکی پتنگا ان کا بھی پریورتن ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کیٹ پشو پکی پتنگوں کا پریورتن پہلے ہو جائے گا اور منشیوں کا پریورتن بعد میں ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ منشیوں کے آدھار پر کیٹ پشو پکی پتنگے ہوتے ہیں، تو منشیوں کا جو آدھار ہے پریورتن کا مول ہے وہ ہے بیج۔ منشیوں کا بیج ہے باپ، پتا، پرجا پتا، اور پرجا پتا کا باپ شیو، گاڈ از ون، گاڈ کا بچہ بھی ون کہا جاتا ہے۔ तो बड़े बच्चे के आधार पर सारा कार्य संपन्न किया जाता है। लास्ट में माने अभी नहीं मानते हैं? क्रिश्चियन वाले कहाँ मानते हैं, दूसरे धर्म वाले कहाँ मानते हैं? साकार को कोई मानता है क्या? दूसरे धर्म वाले कोई नहीं मानते, लेकिन लास्ट में जब एटम बम फटेंगे, चारों तरफ से मौत ही मौत नजर आएगी, तो सबकी हवा खिसक जाएगी, सब उस गॉडफादर को याद करेंगे, कोई अखबारों में पढ़ करके याद करेंगे, कोई टेलीविजन में देख करके याद करेंगे, कोई ट्रांजिस्टर से सुन करके आवाज को ही याद करेंगे, क्या क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोई सन्मुख मिलन मना के याद करेंगे, तो याद सब करेंगे अंत में, निश्चय सबको बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि झाड़ के चित्र में ध्यान से देखिए, जब सब आत्माएं ऊपर जा रही हैं, तो किसके साथ जा रही है? शिव ऊपर और नीचे शंकर का चित्र दिया हुआ है, इससे साबित होता है कि वो निराकार बाप डायरेक्ट किसी को नहीं ले जाएगा, उस साकारी बाप में आकर के प्रीति बुद्धि की, प्रीति की डोर जिनकी जुटी हुई होगी, क्योंकि प्रीति जो होती है वो साकार के साथ ही होती है असली, निराकार के साथ असली प्रीति नहीं होती है, जिसे निरंतर याद कहें, सहज याद कहें, वो आर्टिफिशियल याद है, बिंदु की खींच के याद कर लो, बैठ जाओ आप पांव बांध के हठ योगियों की तरह, उतनी देर याद कर लो, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ज्योति बिंदु को लगातार कोई याद कर सके, निरंतर याद कर सके, ये निरंतर याद हो नहीं सकती, ये तो सिर्फ एक ही है जो निरंतर उस बाप को याद करने में परफेक्ट बनता है, बाकी दूसरी आत्माएं निरंतर याद नहीं कर सकती, यानी प्रजापिता और शिव ज्योति बिंदु के बीच में कोई दूसरा मीडिया नहीं है, बाकी जितनी भी मनुष्य आत्माएं सबको आखिरी हार करके मीडिया बनाना पड़ता है, बिना मीडिया के गति सदगति किसी भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। तो अभी यह बेहद की बात है, फिर भी सभी बेहद के बात को याद करते हैं और अब तक भी याद करते रहते हैं, भगवान को कहते हैं हे बाबा, इनका नाम शिव बाबा है, क्यों नहीं कहा मेरा नाम शिव बाबा है? हैं? कहने वाली तो ज्योति बिंदु शिव की आत्मा है, तो वो शिव बाबा है कहने वाली आत्मा या शिव बाप है? वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, बाबा माना ग्रैंडफादर नहीं है, देखो दुनिया के और जितने संबंध हैं वो तब बनते हैं जब वो शरीर में प्रवेश करता है, सर्व संबंध, एक संबंध जो है वो सदा काल का है, आत्मा और आत्माओं का बाप, उसमें भाई बहन का भी संबंध फिर आपस में नहीं बन सकता, सब आत्माएं आपस में क्या है? भाई भाई। तो जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा हैं। कौन शिव बाबा? जैसे और वैसे ये किसके साथ मिलाई गई? जैसे वैसे की राशि, जैसे हम आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा हैं। तो कैसे? शिव ज्योति बिंदु तो जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आता, उसको तो अपना शरीर ही नहीं है, वो तो परम बंधन में बनता ही नहीं है, वो तो ऑलराउंड पार्ट बजाता ही नहीं है, तो जैसे हम आत्मा है वैसे शिव बाबा कैसे हो गया? हैं? किससे चली किया? हैं? ब्रह्मा से चली किया, फिर घूम घूम के बुद्धि वहीं पहुंच जाती है। शिव ने डायरेक्ट पहले ब्रह्मा में प्रवेश किया या ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है साकार में? एडवांस नॉलेज कुछ समझ में बैठी? बैठी नहीं है। ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है या ब्रह्मा स्वयं रचयिता है? उसका भी कोई रचयिता है साकार में? कौन? प्रजापिता, यज्ञ के आदि में जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से, सिंध हैदराबाद से नहीं, जो मुकर्रर रथ है
आदि से लेकर के अंत तक जिसका रथ है वो मुकर्रर रथ एक ही है आत्मा का, और वो है प्रजापिता वाली सोल। आदि में भी तो अंत में भी, बाकी टेम्परेरी रथ बीच में, वो टेम्परेरी है थोड़े समय के लिए। तो जैसे आत्माएं हैं वैसे शिव बाबा है, वह है परमात्मा जिसको सुप्रीम कहा जाता है। कैसी आत्मा है? परमात्मा, परम माने परे से परे, जिस आत्मा से परे कोई होता ही नहीं। क्या परे माने? पार करके, जैसे पृथ्वी गोल है ना, तो गोल पृथ्वी में चारों तरफ मनुष्य रहे पड़े हैं, हैं? मनुष्य रहे पड़े हैं और उनकी आत्मा परम धाम जाएंगी। तो जो आत्मा परम धाम जाएंगी वो पांच तत्वों को पार करके, आकाश तत्व को पार करके, सूक्ष्म बर्तन को भी पार करके परम धाम जाएंगी। और परम धाम में भी असीम है, जिसकी सीमा नहीं है। सूरज चांद आकाश वाले सितारे की तो सीमा है, क्योंकि वो पांच तत्वों की दुनिया है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं। तो उस असीम परम धाम में जो पृथ्वी और आकाश के चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें जो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, वो सब आत्माओं को चारों तरफ से घेर करके बैठा हुआ है। माना परे से परे है, सबके पार है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं होगी जिसका वो पार क्रॉस करने वाला न हो, बाकी सब उसकी परिधि के अंदर आते हैं। उसके बाद मनुष्य आत्माओं में प्रजापिता, वो ऐसी एक सोल है जो परे से परे बाप को क्रॉस नहीं कर सकती। बाकी जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और मनुष्यों की आत्माएं हैं, उन सब को वो परिधि में ले लेती है, अपने घेरे में लेकर के रहती है। ऐसा क्यों बताया है? कि परिधि में लेकर के रहती है, परिधि माने ये पूरा गोल चक्कर होता है उसको कहते हैं परिधि। ऐसा क्यों कहा? परिधि इसलिए कहा कि पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी पर जब चारों तरफ मनुष्य हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी मनुष्य जा सकते हैं, रहते हैं, पता नहीं उसी समय उनका शरीर टूट जाए। तो जिस समय आत्मा परम धाम वापस जा रही होंगी, सारी पृथ्वी पर मनुष्य होंगे, और वो उनकी बुद्धि में ये होगा कि आकाश से भी परे और सूक्ष्म बतन से भी परे परम धाम, और परम धाम में हम आत्मा रहने वाली, तो गोल पृथ्वी पर परम धाम किधर हुआ? इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ, या इधर हुआ? किधर हुआ? चारों ओर, क्योंकि चारों तरफ से परम धाम ही परम धाम है। तो परम धाम का जो स्थान है वो कोई संकुचित स्थान सीमा के अंदर बना हुआ स्थान हुआ क्या है? नहीं, कोई वन साइडेड आत्माओं का कोई जखीरा इकट्ठा नहीं होगा। आत्माएं बुद्धि के आधार पर, जितनी बुद्धि के आधार पर तीक्ष्ण और सशक्त आत्माएं होंगी, वो उतनी ही परमधाम में ऊंची स्टेज में पहुंच करके सारे ही परिधि को घेर करके रहेंगी। यानी 500 करोड़वी आत्मा को, मनुष्य आत्मा को, हर मनुष्य आत्मा घेर करके रहेगी। 500 करोड़ से ऊपर वाली जो आत्माएं होंगी, और 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जो पहली मनुष्य आत्मा प्रजापिता की, वो 500 करोड़ को घेर करके रहेगी, उनके ऊपर सुप्रीमेसी रहेगी उनकी, और पाइट में भी 84 जन्म में सुप्रीमेसी रहेगी। वो आत्मा किसी के दबाव में नहीं आ सकती। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ये समझे, दीदी दादी या दादाएं, कि हम 108 आत्माओं को कंट्रोल करके रहेंगे, तो वो 108 आत्माएं तो सारी दुनिया की चुनी हुई आत्माएं, उनको कोई भी दीदी दादी दादा कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय एक परम पिता परमात्मा की। और यदि कि आदि में जो प्रजापिता एवं 108 आत्माओं से भी ऊपर है, उस प्रजापिता को तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं भी कंट्रोल नहीं कर सकी। प्रजापिता जैसी आत्माएं, विष्णु बनने वाली जो आत्माएं हैं, वो सबके ऊपर कंट्रोलर होकर के रहती है। तो ब्राह्मण की दुनिया में जब ये बात निकल आती है कि सशक्त आत्माएं जितनी बुद्धि में तीखी होंगी उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होंगी, हाँ नंबर बन जाएंगे, कुछ में बुद्धि की तीक्ष्णता के साथ साथ दिल भी होगा, भावना भी होगी, तो वो आत्मा राइटियस हो जाएंगी। और जिनमें दिल कम होगा दिमाग ज्यादा होगा तो वो लेफ्टिस्ट हो जाएगी। तो राइटियस लेफ्टिस्ट का तो फर्क पड़ सकता है, बाकी बुद्धि जिनमें महती है, महान है, पावरफुल है, तो वो पावरफुल आत्माएं घेर करके तो रहेंगी ज्यादा से ज्यादा परिधि को। तो ज्यादा पावरफुल आत्माएं ज्यादा से ज्यादा को कंट्रोल करने वाली होंगी संसार में। सिर्फ ये संगम युग की ही बात नहीं है, अनेक जन्मों की भी ऐसी ही बात है। अनेक जन्मों में उन आत्माओं को कोई क्रास, दूसरी आत्मा नीचे वाली आत्मा ऊपर वाली को क्रास नहीं कर सकती। इसलिए बाबा बोलते हैं तुम्हारी है रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री में क्या होता है, जो सबसे बड़ा कमांडर जनरल इन चीफ होता है, मार्शल, उसको मिलिट्री का कोई सिपाही क्रास कर सकता है क्या? उसकी बेअदबी कर सकता है क्या? कर भी देगा तो अंजाम क्या होगा? शूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आत्माओं के ये रैंक्स बने हुए हैं, पदवियां बनी हुई हैं, कोई का ऊंचा पद, कोई का नीचा पद। जैसे माला में पद होते हैं, नंबर होते हैं, कोई अम्बल नंबर का, कोई सेकंड नंबर का मणका। तो ऐसे ही 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब अपने अपने पद पर आसीन होंगी। जिसका जो पद होगा वो अपने से नीचे पद वालों के ऊपर तो कंट्रोल करेगा संसार में अनेक जन्मों में, लेकिन अपने से ऊंचे पद वाले के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखो परमात्मा संगम युग में आता है, कितनी बड़ी उपलब्धि कराता है। ये उपलब्धि का आधार क्या है, प्रीति, प्यार। प्यार को ही याद कहा जाता, प्यार नहीं तो असली याद नहीं हो सकती। स्नेह को ही प्यार कहा जाता, स्नेह और प्यार ही याद का आधार बनती। तो वो परमात्मा है जिसको सुप्रीम कहा जाता है, सुपर है, सबको घेर करके रहता है। उनके हम बच्चे हैं, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं, तो उनका निवास स्थान कहाँ है? है सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार बताया, ये नहीं कहा ऊपर। ये तो भक्ति मार्ग में इशारा कर देते हैं, गुरु नानक ने ऊपर को इशारा कर दिया। परमात्मा कहाँ है? ऊपर। वास्तव में ऊपर नीचे की बात नहीं है, वो तो जहां जहां भी सूरज चांद सितारों की दुनिया है, पृथ्वी के चारों तरफ है आकाश। तो उस आकाश के परिध को पार करके परमधाम में भी जो आत्माओं का जखीरा जहां जहां तक है उन सब आत्माओं को क्रॉस करके वो परमात्मा रहने वाला है, चारों ओर से घेर करके। वो कोई ऐसी स्थूल चीज नहीं है बिंदु आत्मा जिसको एक स्थान पर रख दिया जाए। जब आत्मा सशक्त होती है तब उसकी ऐसी स्टेज होती है, संपन्न स्टेज में। और जब आत्मा कमजोर बनती है इस दुनिया में आकर के तो शरीर में बंध करके रह कर तो पार्ट बन जाती है। शरीर के बंधन से जब परे हो जाती है तो वैसा पार्ट बन जाती है। तुम जानते हो परमधाम में सब आत्माएं रहती हैं, एक्टर्स ही आत्माएं हैं। तुम जानते हो नाटक में एक्टर्स नंबर वार होते हैं, कोई ऊंचे से ऊंचे एक्टर और कोई छोटे से छोटा पार्ट बजाने वाले एक्टर। हर एक के पार्ट अनुसार उनको इतनी पे मिलती है। ये तो दुनिया की बात हो गई, यहां कौन सी पे मिलती है, है? जो आत्मा थोड़ी सी आत्माओं को घेर करके रहेगी और जो आत्मा सारी आत्माओं को घेर करके परिध में रहेगी तो पे में अंतर पड़ेगा कि नहीं? पे में अंतर जरूर पड़ेगा। कम परिधि वाले को कम पे मिलेगी क्योंकि उसने छोटा चक्कर लगाया। थोड़ी आत्माओं से रंगमंच पर आने के बाद उसका कनेक्शन होता है और जिसका अनेक आत्माओं के साथ कनेक्शन होता है, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बुद्धियों जिसके साथ जुटा हुआ है, तो उसकी बड़ी दुनिया हो गई ना। जैसे अव्यक्त वाणी में बोला कि हर सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है, अपनी अपनी दुनिया है सबकी। तो किसी की छोटी दुनिया है, किसी की बड़ी दुनिया, और किसी की ऐसी दुनिया जिसकी दुनिया से बाहर कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ी पे किसकी होगी? सबसे बड़ी पे भी उसी की होगी जो सारी दुनिया को परिधि में लेकर के रहता है। तो ये कम पे और ज्यादा पे क्यों बनी? जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो समझते हैं ना, ये बड़ा एक्टर है, ये छोटा एक्टर है, ये हीरो हीरोइन है, इसका साधारण पार्ट है, इसका बड़ा पार्ट है। तो पे में क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है कि नहीं? हाँ, जिनका ज्यादा अच्छा रोल होता है, बड़ा रोल होता है, उनको बहुत पे मिलती है। तो यहां भी, यहां कौन सी पे मिलती है? नहीं, स्मृति के आधार पर पे मिलती है, ठीक है, लेकिन पे कौन सी मिलती है? हाँ, पहली पे तो डायरेक्ट भगवान के द्वारा मिलती है ज्ञान की, लेकिन ज्ञान तो मीडिया है, वो कोई पे नहीं है, पे लेने का साधन है। जैसे किसी को पे दी जाती है तो आजकल उसको ड्राफ्ट दे देते हैं क्या? तो ये ज्ञान भी जो परमात्मा बाप देते हैं ये भी एक तरह का ड्राफ्ट हो गया। किसी को ज्यादा पैसे का है ज्ञान रत्नों का और किसी को कम ज्ञान रत्नों का ड्राफ्ट दिया हुआ है, मिलता है। लेकिन असली प्राप्ति क्या है? याद कोई प्राप्ति नहीं है। हाँ, वो जो कवरिंग है बादशाही की, हर आत्मा को मिलती है। अपनी अपनी दुनिया में अपना अपना राज्य होगा, किसी की तो 500 करोड़ की दुनिया का राज्य होगा और कोई का कम का होगा। तो कोई ऐसी भी आत्मा होगी, मनुष्य आत्मा, जिसका सिर्फ कीड़े मकोड़ों जैसी मच्छरों सदस्य जो अंत में आत्मा उतरती है 2 करोड़, तो 600-700 करोड़ आबादी भी बताइए, उनके ऊपर ही राज्य होगा, बाकी औरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। और उनमें भी कोई ऐसी आत्मा होगी जो सिर्फ अपने ऊपर ही राज्य कर सकेगी, उसकी परिधि में कोई नहीं होगा। अंतिम आत्मा, अंतिम जो मनुष्य आत्मा होगी वो भी रुद्रमाला में परमात्मा बाप के सबसे नजदीक होगी। क्यों नजदीक होगी? कि जैसे बाप जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वैसे वो आत्मा भी चक्र में तो आएगी, लेकिन उसका चक्र इतना छोटा होगा कि होना न होना बराबर, अभी अभी गई, अभी अभी वापस परम धाम में बाप के पास, तो वो सबसे नजदीक हो गई। वो है लेफ्टिस्ट और वो है राइटिस्ट, कौन? प्रजापिता। तो बोला हर एक के अपने पार्ट के अनुसार इतनी पे मिलती, जो जितना परमा को संभालने वाला बनता है उसको उतनी पे मिलती। सब आत्माएं जो वहां रहती हैं सब पार्टधारी हैं। कहां रहती हैं? हैं? वहां मैंने कहा परम धाम में। लेकिन एक वाणी में तो बोला है, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, हैं? तो जरूर साकार सृष्टि पर भी कोई ऐसा स्थान होगा जिसका संसार में इतना नाम बाला होगा कि कयामत के समय में सबकी बुद्धि वहीं पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? जहां उन बीज रूप स्टेज में रहने वाली आत्माओं का संगठन इकट्ठा होगा, तपस्या भूमि। उसकी यादगार क्या है? तपस्या भूमि की यादगार क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। सब तपस्या में वहां बैठे होंगे, तो सबकी बुद्धि, सारी दुनिया की बुद्धि, बुद्धि योग वहीं लग जाएगा। तो मन बुद्धि रूपी आत्माएं सब कहां इकट्ठी हो जाएंगी? 500 करोड़ पहले साकारी परमधाम में इकट्ठी होंगी या पहले वहां जाएंगी? साकारी परमधाम जो होगा वो सारी दुनिया में विख्यात हो जाएगा। भले शरीर से कोई वहां न पहुंचे, लेकिन मन बुद्धि की याद से, क्योंकि चित्र तो सब जगह पहुंच जाएंगे, टेलीविजन से चित्र तो हर जगह पहुंचे हुए होंगे, अखबारों से तो हर जगह पहुंचेंगे। चलो अखबारों से भी न पहुंचे, टेलीविजन से भी न पहुंचे, तो कम से कम स्मृति के आधार पर सब तक ये बात कानों कान पहुंच जाएगी कि वो वतन ऐसा 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 ऐसा, तो सब की स्मृति की डोर वहीं लगी हुई होगी। इसलिए बोला कि मधुबन के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। जो मधुबन वासी हैं उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। किस बात की? वाइब्रेशंस को बनाने की अथवा बिगाड़ने की। हाँ, अगर बाप से विपरीत संकल्प हुआ, बाप के संकल्प के विपरीत विरोधी संकल्प है, तो वाइब्रेशन बिगड़ेगा। टकराव होगा या नहीं होगा? टकराव होगा तो वाइब्रेशन टूटेंगे, और वाइब्रेशन जब मधुबन में टूटेंगे तो उसका असर बाहर की दुनिया में भी पड़ेगा जरूर, वहां भी वाइब्रेशन टूटेंगे। जब वाइब्रेशन टूटते हैं तो याद की यात्रा टूट जाती है। जैसे फोन करते हैं, फोन से कनेक्शन जोड़ते हैं तो कहीं से कोई डिस्टरबेंस आ जाती है, कट कर देता है, तो बातचीत नहीं हो पाती, कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसे ही ये जो वाइब्रेशंस को बिगाड़ने वाली आत्माएं हैं वो बाप की याद को तोड़ने का पुरुषार्थ करती। दूसरी आत्माओं का जो बुद्धि योग का लिंक है वो वाइब्रेशन टूटने के कारण उनका बुद्धि योग जुट नहीं सकेगा, उनको परेशानी हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी। जैसे कि वो आत्माएं ईश्वरीय रास्ते में विघ्न बन करके खड़ी हो जाती, विघ्नों की दीवार, जिसे बाबा कहते हैं भीतर बुद्धि, भीतर माने भीत, भीत माने दीवाल, जो पुरुषार्थ के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ा हो जाए उसको क्या कहते हैं? भीत, भीत माने दीवाल। हाँ, सबसे बड़ी दीवाल कौन सी है? हैं? एक सबसे बड़ी दीवाल भी है दुनिया में, बहुत प्रसिद्ध है, हैं? चीन की दीवाल। इससे बड़ी दीवाल दुनिया में कोई है ही नहीं, बहुत चौड़ाई में ईंट है लगा करके और हजारों माइल लंबी कर दी। हो गए, लेकिन दीवाल तो होगी ना, हैं? 2500 वर्ष हो गए, दीवाल तो है ना, ये झूठ है कि 2500 वर्ष हो गए, ये किसी से सुन रखा है। ये वाणी चल रही थी 5386 की, तीसरा पेज का मध्यांत। अर्थात 12 नंबर के रजिस्टर में 6 पेज का मध्यांत। बात चल रही थी ये दुनिया खत्म हो जानी है, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे में मन को समा दो, अर्थात संकल्पों को समा दो, जो बाप के संकल्प सो बच्चों का संकल्प, तब क्या होगा कि जो कर्म करेंगे वो बाप के अर्थ करेंगे, मत याजी भव मेरे लिए यजन करेंगे। तब क्या होगा, इस कब्रस्तान को भूलते जाएंगे, माया के तूफान आएंगे, परंतु डरना नहीं है, कर्म इंद्रियों से भी कर्म नहीं करना है। तूफान तब आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। एक तरफ कहते हैं जब याद की यात्रा में रहते हो तो माया इंटरफियर करती है, ज्ञान में माया इंटरफियर नहीं करती। और यहाँ क्या कहा, तूफान तब आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। तो पहले हम बाप को भूलते हैं तब तूफान आते हैं। तो योग में माया इंटरफियर नहीं करती होगी, तो बात एक ही है, बाप की याद में है, पूर्व जन्मों का कोई ऐसा योग, कुयोग कहें, उदय हो गया, और जिस आत्मा के साथ पूर्व जन्म का योग है उसने आकर के इंटरफेयर कर दिया, तो बाप से बुद्धि योग टूट जाता है, बाप को भूल गए, फिर उस आत्मा के साथ लेन देन शुरू हो जाती, तो माया इंटरफेयर करती है। ये कहें अथवा तो ये कहें कि बाप से प्रीति टूट जाती है तो माया इंटरफेयर करती है, बाप से अगर पूरी प्रीति हो तो दूसरा आकर के बीच में टांग अड़ा कैसे सकता है, जरूर हमारी प्रीति में प्यार में कमी है। जैसे दो लवर्स आपस में मिल रहे हों और कोई तीसरा आ जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको भगाना चाहेगा, उसको मौका नहीं देगा। तो ऐसे ही जब हम बाप की याद में बैठे हैं तो तीसरा कोई आ कैसे गया, आया इसका मतलब है कि उससे जास्ती प्यार साबित हो गया। तो बाप कहते हैं तूफान तब आते हैं जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वो यात्राएं तो जिस्मानी यात्राएं एक बार की, दो बार की, चार बार की करते ही रहते, जन्म जन्मांतर करते आए, और यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, क्योंकि वो है मृत्यु लोक की यात्रा। जन्म मरण, जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। अमर लोक की यात्रा यह है, क्योंकि अमरनाथ बाप खुद यह यात्रा सिखाते हैं, एक बार अटल निश्चय पैदा कर लिया जाए तो अनिश्चय माने की दरकार नहीं रहे। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद न करो। देहधारी को याद करने से क्या होता है? देहधारी मृत्युलोक के वासी हैं सब। तो जितने भी देहधारी हैं मृत्युलोक के वासी होने के कारण उनका अंजाम क्या होता है? मृत्यु को पाते हैं। तो जब उनको याद करेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगी? हम भी मृत्यु को पाएंगे, यानी अनिश्चय को प्राप्त करेंगे। अगर उस विदेही को याद करेंगे जिसकी अपनी देह है ही नहीं, भले वो देह में आया हुआ है लेकिन वो देह इस मृत्युलोक की दुनिया में मृत्यु को नहीं पानी है, मृत्युलोक से पार जाएगी। कहते हैं ना, नैया मेरी उस पार लगाओ। तो जब ऐसे विदेही को हम याद करेंगे जिसने ऐसी नैया ली हुई है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? हम भी मृत्युलोक को प्राप्त नहीं होंगे, हम भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसा संग वैसा। सितारे तो अनेक होते हैं, कोई सितारे बहुत हलचल में आते हैं, बहुत लंबा चौड़ा चक्कर लगाते हैं स्मृतियों का, अनेकों सितारों के संसर्ग संपर्क में आते हैं। कोई सितारे छोटा चक्कर लगाते हैं, थोड़े सितारों के संसर्ग संपर्क में आते हैं। कोई सितारा ऐसा भी है जो अटल है, उस सितारे के सब चक्कर लगाते हैं लेकिन वो किसी का चक्कर किसी के चक्र में नहीं आता। कौन सा सितारा? ध्रुव तारा। तो ऐसे ध्रुव तारा में बाप आकर के प्रवेश करते हैं। अगर ऐसे बाप का हम संग करेंगे तो हमारी स्टेज क्या होगी? है? हमारी स्टेज भी अटल होगी, हम भी जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो जाएंगे। अनिश्चय रूपी मौत हमारी नहीं हो सकती, ये होगी हमारी अमरलोक की यात्रा। तो ये एक बार होती है, ऐसे नहीं कि घड़ी घड़ी वो यात्रा करनी पड़े। कोई देहधारी को याद न करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं, हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो तार दिया जाता है, बच्चा पैदा हुआ। मृत्यु होती है तो भी तार देते हैं, टेलीग्राम करते हैं, मर गया। तो एक बार जयंती होगी कि बार बार जयंती होती है? बाबा पूछते हैं शिव जयंती की बच्चे कितनी बार तारें भेजते हैं, क्या हर वर्ष शिव की जयंती होती है? हैं? शिव की हर वर्ष जयंती होनी चाहिए क्या? हैं? कोई अचानक कोई ऐसी खबर होती है तो उसका टेलीग्राम किया जाता है। तो बच्चा पैदा हुआ, खुशी हुई तो टेलीग्राम किया गया, शिव जयंती मना, शिव का जन्म हुआ, अर्थात शिव प्रत्यक्ष हुआ, तो उसकी तार करते हैं बच्चे। तो कितनी तारें भेजते हैं? शिव जयंती की। बाप कहते हैं तत्त्वम, क्या तुम? तत् माने वह, तुम माने तुम हो, तुम क्या हो? शिव जयंती की तार भेजी, शिव का जन्म हुआ। तो शिव का जन्म हुआ कि क्या मतलब कि तब तुम माने हम भी शिव हैं? नहीं, शिव तो है ज्योति बिंदु का नाम। ज्योति बिंदु के जन्म की बात नहीं है। वो शिव जयंती जो मनाई जाती है जब ज्योति बिंदु किसी साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में या ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो उसकी यादगार है क्या शिव जयंती? ये कोई वर्ष वर्ष मनाने की बात नहीं है, इसकी वर्ष वर्ष तार भेजने की बात नहीं है। तत्त्वम का मतलब क्या हुआ कि तुम कोई शिव नहीं हो, तुम क्या हो? हैं? शिव ने जिसने प्रवेश किया और जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ, वो जो पद पाता है वही तत्त्वम, वही पद तुम पाते हो। वो नर से नारायण बनता है तो तुम भी नर से नारायण जैसे बनते हो, इसलिए बोला तत्त्वम। तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं, कब नहीं? तत्त्वम, जब तुम भी उस स्टेज को पाओ, ऐसी अटल स्मृति तुम्हारी भी हो जाए। कैसी अटल स्मृति? जैसी, हाँ, जैसी नारायण बनने वाली आत्मा की अटल स्मृति हो जाती है कि मैं ये अमुक सितारा हूं, मेरा अमुक पार्ट है, सत्य रूपी रंगमंच पर मैं ये विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। तो ऐसी अटल स्मृति, ऐसा अटल निश्चय बुद्धि तुम भी बन जाओ, तो बाप तुमको भी बधाइयां देते हैं। बधाइयां कब देते हैं? हैं? हाँ, तुम्हारे भी पार्ट की प्रत्यक्षता हो जाए, तुम्हारी आत्मा भी प्रत्यक्ष हो जाए संसार में। पहले तो अपने आप को प्रत्यक्ष हो, फिर ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो, फिर सारे संसार में प्रत्यक्ष हो, क्योंकि हर आत्मा को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबके सामने प्रत्यक्ष होना है। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है, तो जिस सितारे की जो जितनी दुनिया है उस दुनिया के बीच में उस सितारे को प्रत्यक्ष जरूर होना है। तो वास्तव में तुमको बधाइयां हो, क्योंकि मनुष्य से तुम देवता बनते हो। मैं थोड़े ही कुछ बनता हूं, हैं? बधाई किस बात की? कुछ परिवर्तन अच्छा हुआ हो तो बधाई। मैं तो बिंदु का बिंदु, बिंदु था, बिंदु हूं और भविष्य में भी बिंदु ही रहूंगा, तो मेरे को क्या बधाइयां दोगे? बधाइयां वास्तव में किसकी होनी चाहिए? तुम बच्चों की। क्यों? क्योंकि तुम नीचे से ऊंच बनते हो, पतित से पावन बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो, तो वास्तव में तुम्हारी बधाइयां हो। बधाइयां तुमको मिलनी चाहिए जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर जो पास विदानर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि पास विदानर तो बहुत थोड़े होते हैं। बाप तुमको बधाइयां देते हैं, कब बधाइयां देते हैं? कि जब तुम रावण की जंजीरों से छूटे हो तब बाप तुमको बधाइयां देते। जैसे कोई जेल में से छूट के आता है तो उसको बधाई दी जाती, कि लंबी जेल से छूट गए, खुशी हुई। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सभी की रस्सी बाप के हाथ में है, वो सभी को ले जाएंगे। कौन सी रस्सी है? हैं? पतंगा होता है, उसमें भी डोरे से निकले हुए होते हैं। पूंछ में देखा पतंगा, उसमें पूंछ में डोरे से निकले हुए होते हैं। तो तुम्हारी भी रस्सी बाप के हाथ में है। सब आत्माएं पतंगे। पतंगे कितने प्रकार के बताए? तीन प्रकार के बताए। एक पतंगे होते हैं बार बार चक्कर काटने वाले, आते हैं, पहचानते हैं, चक्कर काटते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चक्कर काटते हैं, फिर थोड़ा सेक लगता है समा का, फिर भाग जाते। तो ये आने और जाने का उनका चक्कर चलता रहता है, उनको कहते हैं चक्कर काटने वाले पतंगे। ऐसे ही ब्रह्मा ब्राह्मण आत्माओं में भी होती है, कोई कम चक्कर काटते, कोई जास्ती चक्कर काटते, कोई तो चक्कर काटते ही काटते खलास हो जाते, बाप के फिर भी नहीं बन पाते, स्वाहा नहीं हो पाते। तो ये सेकंड कैटेगरी बताई। थर्ड कैटेगरी क्या है? जो आते हैं, नहीं, चक्कर काटा और चले गए, फिर वापस कभी आते ही नहीं, तो वो हो गए थर्ड क्लास। तभी आएंगे जब बाप प्रकट हो जाएगा सारे संसार माला के मणके, प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तब आने से कोई फायदा फायदा नहीं। और अव्वल नंबर पतंगे कौन से होते हैं? पावरफुल। कौन से होते हैं? तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महान कल्याण, आए और स्वाहा हो गए, परवाह नहीं की कि अंग जलेंगे या रह जाएंगे, मरेंगे या बचेंगे, क्योंकि प्रीत के परवाने जो होते हैं वो मरने की भी परवाह नहीं करते। अरे देहवान तो जलेगा ना, पतंगा स्वाहा होगा तो देह के अंग देह का भान जलेगा तो जरूर, जले बिगर परवाह ना, स्वाहा कैसे होगा। तो बताया सभी आत्माएं पतंगे, जाति जाति के तीन प्रकार के पतंगे बताए। सभी की रस्सी बाप के हाथ में है, रस्सी माना स्मृति की डोर है। क्या बताए? धागा, हाँ धारम, स्मृति की डोर सभी की बाप के हाथ में। फिर पतंगों का क्या दोष? जब सभी की स्मृति बाप के, स्मृति रूपी डोर बाप के हाथ में है, तो पतंगों का क्या दोष कि भाई चक्कर काटने वाले क्यों बने या सुहा होने वाले क्यों नहीं बने समय से पूर्व, या कि सुहा होने वाले क्यों बने, जल्दी कैसे बन गए? जब सबकी रस्सी बाप के हाथ में है तो बाप जैसे चलाएगा रस्सी को वैसे ही चलेंगे ना, हैं?
तो ऐसे नहीं होने से।
हाँ, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है तो, लेकिन कोई कोई की रस्सी ऐसी है स्मृति की डोर जो बाप के हाथ से निकाल करके दूसरे देहधारियों के हाथ में सौंप देते हैं। आखिरी तो सबके बाप के हाथ में आएगी, सबकी स्मृति की डोर, तो बाप इसमें क्या करे? जब स्वतः ही स्मृति की डोर बाप के हाथ से निकाल के दूसरे की याद में सौंप दी तो बाप कुछ नहीं कर सकता। तो जिसकी याद में पहुंच गई वहां चक्कर काट के पहुंच जाएगी आत्मा, तो स्मृति की डोर तो है सबकी बाप के हाथ में, आगे और पीछे, लेकिन अंतर पड़ जाता है। सबके हाथ में कब होगी? सबकी रस्सी हाँ बाप के हाथ में कब होगी? लास्ट में, जब सब आत्माएं परम धाम जावेंगी तो अनुभवी बन जावेंगी। कैसे दुनिया में कोई भी अंत समय में काम आने वाला नहीं। बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, पति पति नहीं रहेगा, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी, कोई किसी का साथ देने वाला रहेगा नहीं। ऐसी विनाश की विभीषिका जगेगी जिसमें सबको अपनी अपनी पड़ेगी। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो बाप का सहारा लेंगी, एक बाप दूसरा न कोई। तो अंत में सब आत्माओं को ये निश्चय हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा कि एक बाप के सिवाय अब दूसरा कोई हाँ हमारी रस्सी को साधने वाला नहीं है। तो फिर एक के हाथ में सब आत्माएं अपनी रस्सी सौंप देंगी और सबको बाप परमधाम ले जाएंगे। तो वह बाप सबको परमधाम ले जाएंगे, सर्व का सदगति दाता है, लेकिन अंतर क्या पड़ता है? फिर तो हम निश्चिंत हो जाए, क्योंकि वो तो सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सदगति देने वाला है, उसके हाथ में डोरी तो आनी ही आनी है। फिर हम तो निश्चिंत हो जाए, हमें चिंता काहे की? हाँ, अगर उसके हाथ में पहले से डोरी दे देंगे तुरंत दान महाकल्याण होगा, माना पहले से हम अर्पण में हो जाएंगे, अर्पण में बुद्धि हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम पहले ही परम धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। और नहीं तो जाएंगी तो सभी आत्माएं, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो है तो वो सभी का सदगति दाता, ऐसी तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी नहीं बचेगी जिसकी सदगति न हो। सत गति, सतगति माने सच्ची गति। सच्ची गति क्या होती है? एक तो होती है गति, गति माने मुक्ति, इस दुनिया से दुखों से मुक्त हो जाना। तो शरीर छूटा और शरीर का बंधन छूटा तो आत्मा मुक्त हो जाती, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की भी आत्मा मुक्ति को पा जाती। लेकिन वो सदगति को नहीं पाते। कौन सी सदगति? जो देवताओं को सदगति मिलती, सतयुग त्रेता वाली, वो सदगति को नहीं पाते। दीर्घकाल की सदगति, कैसी सदगति पाते हैं? अल्पकाल की। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं परम धाम से और एक जन्म के लिए सदगति पाती है, बाकी दूसरे जन्म में फिर उनको गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो गर्भ में तो गर्भ जेल है, द्वापर कलयुग में दुख हो जाता है। तो देवताओं जैसी सदगति प्राप्त करना ये गर्भ जेल नहीं है, वो गर्भ महल कहा जाता है, और एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का गर्भ महल। तो जो द्वापर से उतरने वाली आत्माएं होती हैं उनकी अल्पकाल की सदगति होती, फिर काल के अनुसार भी उसका अंतर पड़ता है। द्वापर के आदि में जिनकी सदगति होगी और कलयुग के अंत में जिनकी सदगति होगी एक जन्म की प्रवेश करके, वो आत्माएं उस तन के द्वारा सुख भोगेंगी, दुख नहीं भोगेंगी जिसमें प्रवेश किया। जैसे क्राइस्ट में प्रवेश किया तो ऊपर से आने वाली क्राइस्ट की आत्मा ने सुख भोगा, लेकिन दुख किसने भोगा? फांसी का, जिसने जिसका तन था। तो द्वापर में आने वाली आत्माओं की जो सदगति होगी, सदगति की स्टेज होगी, और कलयुग में आने वाली आत्माओं की जो सदगति की स्टेज होगी, उनमें ज्यादा सुख किसको होगा? द्वापर में जो आने वाली होंगी उनको ज्यादा सुख भासेगा, और जो कलयुग में आने वाली होंगी उनको अल्पकाल का सुख भासेगा। तो सदगति में भी अंतर पड़ जाता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सदगति तो सबकी होती है। सच्ची गति, सच्ची गति है ही शरीर में रहते सुख प्राप्त करना, दुख प्राप्त नहीं करना। तो तीन प्रकार की सदगति हो गई टोटल सामूहिक रूप से, मुख्य रूप से तीन प्रकार की सदगति। एक तो सदगति उन आत्माओं की जो इसी जन्म में इसी शरीर से सुख भोगती है पुरुषार्थ करके और दुख नहीं भोगती, ऐसी अपनी मन की स्टेज बना लेती कि तन का दुख उनको अनुभव में ही नहीं आता, तो वो हो गई उन आत्माओं की सदगति जो संगम युग में ही अपने शरीर के रहते रहते उस शरीर को कंचन काया बनाने वाली, अगले जन्म में सदगति नहीं प्राप्त करेंगी लेकिन इसी जन्म में इसी पुरुषार्थी शरीर को पुरुषार्थ के आधार पर परिवर्तन करके, अपनी मन बुद्धि को परिवर्तन करके, शरीर को परिवर्तन करके सदगति को प्राप्त करने वाली, वो हो गई अव्वल नंबर आत्माओं की सदगति। और सेकेंडरी कैसी आत्मा? राधा कृष्ण जैसी आत्मा जो सतयुग त्रेता में अगला जन्म लेकर के सदगति अनुभव करेंगी लेकिन इस ब्राह्मण जन्म में सतगति का अनुभव अपने शरीर से जिसके पुरुषार्थ करते हैं उससे अनुभव नहीं कर पाती, तो वो सेकंड क्लास सदगति, वो भी श्रेष्ठ है क्योंकि वो भी अनेक जन्मों की सदगति है जिसमें शरीर रहते हम सुख भोगेंगे अनेक जन्म अनेक शरीरों से लेकिन दुख नहीं भोगेंगे। और तीसरी सदगति वो है जो ऊपर से आत्मा परम धाम से द्वापर में आती है और आकर के एक जन्म के लिए सदगति का अनुभव करती है, शरीर में रहते सुख का अनुभव करती है, दुख का अनुभव नहीं करती, तो वो हो गई थर्ड क्लास सदगति। तो सदगति को तो सब पाएंगे, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी नहीं होगी जो कुछ न कुछ सदगति को प्राप्त न करे। लेकिन अंतर क्या है, किस बात का अंतर पड़ गया है? क्या अंतर पड़ गया? याद का अंतर पड़ गया। याद का क्या अंतर पड़ा? फर्स्ट क्लास वो क्यों, वो सेकंड क्लास क्यों, वो थर्ड क्लास क्यों? ऐसी कौन सी याद की उन्होंने? ये याद में अंतर क्यों पड़ा? हाँ, निरंतर में याद क्यों नहीं हुई? हाँ, ये डोरी की बात चल रही थी ना, पतंगों की बात, कि जिन्होंने डोरी बाप को पहचाना, प्रैक्टिकल पार्ट को पहचाना और प्रैक्टिकल बाप के पार्ट को पहचान करके अपनी डोरी उसी जन्म में बाप को सौंप दी, तो वो इसी जन्म में इसी शरीर से सदगति को प्राप्त होती। और जिन आत्माओं ने बाप का जो असली पार्ट है, जो वर्षा देने वाला बाप है, उसको शरीर रहते नहीं पहचाना लेकिन शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके पहचाना, तो उनको फिर वो फर्स्ट क्लास सदगति नहीं मिलती। और तीसरी वो जिन्होंने ना इस शरीर के रहते पहचाना ना बाप की बनी, अपनी डोरी स्मृति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, प्रीति की डोरी, और शरीर छोड़ करके भी सूक्ष्म शरीर धारण करके भी प्रीति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करके भी आत्मा उसी रास्ते पर चलती है कि अंत मते सो गति। मृत्यु के समय अगर किसी को सूक्ष्म शरीर मिलना है तो मृत्यु के समय उसकी जो आकांक्षा होगी उस आकांक्षा की पूर्ति ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा सरस्वती, शरीर तो उन्होंने छोड़ा लेकिन शरीर छोड़ते समय भी उनके अंदर एक वासना रही, क्या? कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नई दुनिया का निर्माण करूंगा। ये अंत मते तो गते, यानी जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी उनको वही कार्य करना पड़ा, क्योंकि वो लगन मन बुद्धि में बस गई। और तीसरे प्रकार की वो आत्मा होती है जो ऐसी स्वर्गीय दुनिया के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाती, कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहां भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की, लेकिन शरीर छोड़ करके दूसरों में प्रवेश करके पहचाना, तो उनको फिर वो फर्स्ट क्लास सदगति नहीं मिलती। और तीसरी वो जिन्होंने ना इस शरीर के रहते पहचाना, न बाप की बनी, अपनी डोरी स्मृति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, प्रीति की डोरी, और शरीर छोड़ करके भी सूक्ष्म शरीर धारण करके भी प्रीति की डोरी उसके हाथ में नहीं दी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करके भी आत्मा उसी रास्ते पर चलती है कि अंत मते सुगते। मृत्यु के समय अगर किसी को सूक्ष्म शरीर मिलना है तो मृत्यु के समय उसकी जो आकांक्षा होगी उस आकांक्षा की पूर्ति ही सूक्ष्म शरीर के द्वारा होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा सरस्वती, शरीर तो उन्होंने छोड़ा लेकिन शरीर छोड़ते समय भी उनके अंदर एक वासना रही, क्या? कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नई दुनिया का निर्माण करूंगा। ये अंत मते तो गते, यानी जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी उनको वही कार्य करना पड़ा, क्योंकि वो लगन मन बुद्धि में बस गई। और तीसरे प्रकार की वो आत्मा होती है जो ऐसी स्वर्गीय दुनिया के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाती, कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है जहां भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की